गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। आप सभी का आज के इस सत्र में हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं। एक्सटेंड अ वेरी हार्टी वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। खास करके एक बहुत सुंदर आज का टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट द आर्ट ऑफ लिविंग, टू बी हैप्पी ऑलवेज। शुरू करने के पहले आई एम वेरी हैप्पी टू मीट ऑल ऑफ यू। आप में से कितने भाई बहने हैं जो पहली बार ज्ञान सरोवर में आए, वो जरा हाथ उठाए। अच्छा, वाह, स्वागत है। राइट, आपको दो तीन दिन में यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, गुड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, क्योंकि टॉपिक बहुत लाइट है, हल्का है, बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है। तो मैं भी आपको कोई ज्यादा हैप्पीनेस की फिलॉसफीज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सिंपल सिंपल बातें चित्रों के द्वारा हम देखने की और कोशिश समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो शुरू करें। राइट, क्योंकि हैप्पीनेस की बात है ना, तो आई एक्सटेंड ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाप रे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। अरे बाबा, ये सेम टू यू नहीं, एसएमएस की भाषा है, इसमें इमोशंस ही नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं है। कुछ लोग मैं कहेंगे, स्वामी भाई ये है ना, सितंबर महीना चल रहा है, टुडे इज सितंबर स्टार्टिंग, काहे का हैप्पी न्यू ईयर? हैप्पी न्यू ईयर तो हम 1 जनवरी को कहते ना। अभी वी विल डू दिस, वी विल विश ईच अदर ऑन 1 जनवरी 2019। अभी काहे का हैप्पी न्यू ईयर भाई? इस साल स्वामी भाई पहली बार आप सभी से मिल रहे हैं, करेक्ट? तो क्या हम अधिकार से आपसे नहीं बोल सकते हैं क्या? जरूर बोल सकते हैं, पहली बार मिल रहे हैं। तो मैं फिर से आपको विश करता हूं, ठीक है? आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। फिर से एमटीयू का संस्कार ही चेंज नहीं होता, ये एसएमएस की भाषा ही नहीं चेंज होती। अब मेरे साथ बोलिए, मैं आपको सिखाता हूं। हैं, तो 2019 जनवरी 1 को क्या करना है आपको मैं बताता हूं। मैंने आपको विश किया हैप्पी न्यू ईयर, तो आप भी मुझे विश करिए। सभी नाम लेकर बोलिए, सभी बोलिए स्वामी भाई। थोड़ा जोर से बोलिए, नहीं डराओ नहीं ना, आप तो डरा देते हो। हाँ, थोड़ा प्यार से बोलिए, हैं, थोड़ा प्यार भरिए ना उसमें। हाँ, प्यार से बोलिए स्वामी भाई, और थोड़ा प्यार भरिए स्वामी भाई। आपको भी अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कितना अच्छा लगा ना सुनकर। सेम टू यू, सेम टू यू। क्या है इसमें? कोई इमोशंस नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं। राइट, आपको याद होगा दोस्तों, पुराने जमाने में कुछ साल पहले हम लोग जो हैप्पी न्यू ईयर में ना ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे, राइट, लिखते थे और वो पोस्ट होता था, आपके पास आता था, और जैसे ही आप वो करते थे इतना अच्छा फीलिंग आता था। राइट, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। राइट, आपको याद है दिवाली के समय पर या कोई फेस्टिवल के समय पर, मुझे याद है बचपन का दिन जब हम मामा जो थी ना, थाली में प्रसाद वसाद भर के देती थी, लड्डू वड्डू भर के देती थी, उस पर एक वो चढ़ा देती थी, और हम बाजू वाले के घर पे जाते थे, हैप्पी दिवाली। राइट, और फिर जब वो वेट करते थे, फिर कहते आंटी मामा ने कहा है कि वहां का भी प्रसाद थोड़ा डालकर लेकर आना। हम लोग इंतजार करते थे, ये हमारे बचपन के दिन थे। और आज हैप्पी न्यू ईयर में, हैप्पी दिवाली में, दशहरा में, बाप रे, सुबह उठे सारा व्हाट्सएप ग्रुप में, यहां का हैप्पी न्यू ईयर, वहां पे वहां का हैप्पी न्यू ईयर, यहां पर, हा बाप रे, कितनी बड़ी जिम्मेवारी किया। होता ना, और हमको लगता हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। राइट, ये हैप्पीनेस के इमोशंस को एक फीलिंग है, इट्स एक्चुअली अ फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का ये प्रवाह है। राइट, इट्स ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो जितना जितना ये टेक्नोलॉजी आ गया कहीं ना कहीं, राइट, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो रहा है, लेकिन वो भावनाएं कम हो रही है। एनीवे, आपने बहुत प्यार से मुझे हैप्पी न्यू ईयर कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे याद आता इसी तरह एक सभा में मैंने सबको आई विश ऑल ऑफ यू हैप्पी न्यू ईयर, तो उन्होंने भी बड़े प्यार से मुझे कहा। राइट, तो मैंने कहा देखो, जब भी एक नया साल शुरुआत होता है ना, तो हम लोग हैप्पी न्यू ईयर सबको विश करते, ग्रीटिंग कार्ड भेजते, ईमेल भेजते, यस और नो? सभी ने कहा यस। हमने कहा अच्छा, ये पिछले साल भी आपने किया था? सभी ने कहा यस। तो मैंने कहा काम करिए, अब पिछले साल के 365 दिन को देखिए, और पिछले साल बताइए 365 दिन में कौन सा दिन आप बहुत खुश हुए। तो जैसे ही मैंने कहा ना, तो लोगों के चेहरे में थोड़ा तनाव आ गया। मैंने कहा सोचो सोचो ना, हैप्पी न्यू ईयर कहते रहते हो, सोचो। मैंने कहा ओके, आई विल मेक योर जॉब इजी, एक काम करो, अपने जीवन रूपी यात्रा को देखिए और वो इवेंट पता लगाइए जब आप बहुत खुश हुए तो लोगों के चेहरे में ज्यादा तनाव हो गया। मैंने कहा आधी जिंदगी गुजर गई आप तक हैप्पी इवेंट नहीं बता सकते, बताइए। मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर किया, फाइनली एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, मैंने कहा थैंक गॉड एटलीस्ट देयर इज वन हैप्पी पर्सन। मैंने कहा बोलिए सर कब आप बहुत खुश हुए थे? उन्होंने खड़े होकर कहा स्वामी भाई जब मैंने गाड़ी खरीदी थी। मैंने कहा ठीक है थोड़ा खुशी से बोलो ना। बोला नहीं सर ज्यादा खुशी नहीं हुई, गाड़ी जो सेकंड हैंड की गाड़ी थी। मैंने कहा अच्छा मैंने कहा अच्छा नई गाड़ी खरीदो तो खुश होते थे? हाँ मैं खुश होता था। मैंने कहा अच्छा भाई साहब इस संसार की सबसे महंगी गाड़ी खरीदे तो खुश होते थे? हाँ मैं बहुत खुश होता था। मैं कहा अच्छा बताइए भाई साहब इस संसार की सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है? उन्हें सोचकर कहा मर्सिडीज बेंज। मैंने कितनी कॉस्ट होगी? बोला सर 10 लाख होगी, 12-15 लाख होगी। मैंने कहा जो मर्सिडीज बेंज होती है रोल्स रॉयस फरारी गाड़ी होती नहीं, कस्टमाइज गाड़ी होती है, आपके पास जितना धन है उसके हिसाब से आपको गाड़ी बनाकर देते हैं, ये मारुति अल्टो की तरह मास प्रोडक्शन नहीं होता है, राइट? और इसकी एक रेंज होती है एंड इट रेंजेस फ्रॉम 25 लाख टू 2 करोड़, 2 करोड़ तक जाती है, राइट? तो मैंने कहा भाई साहब अगर आपके पास 2 करोड़ है, अगर आप 2 करोड़ की मर्सिडीज बेंज खरीदेंगे तो खुश होंगे? बोला स्वामी भाई कब से कह रहा हूं मैं बहुत खुश होऊंगा। मैंने कहा उसी तरह ईश्वर ने हमको ये भी एक बहुत सुंदर मर्सिडीज बेंज की गाड़ी दी है, अब इसकी कॉस्ट कितनी है बताइए? 2 करोड़ के नीचे नहीं बोलना, एटलीस्ट फॉर गॉड सेक, राइट? बोला सर इनवैल्यूएबल है, प्राइसलेस है, बहुमूल्य है, अमूल्य है। मैंने कहा डॉक्टर्स ने ना इसकी इकोनॉमिक कॉस्टिंग करने की कोशिश की, कैसे किए? आंखों में प्रॉब्लम है तो आई गो टू एन आई स्पेशलिस्ट, हार्ट में प्रॉब्लम तो हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी में प्रॉब्लम तो किडनी स्पेशलिस्ट, सारी कॉस्टिंग की गई। और जब पहली बार एक डॉक्टर ने कहा मुझे इतना अच्छा लगा, कितना कॉस्ट है, राइट? जब डॉक्टर ने कहा स्वामी भाई द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ दिस वंडरफुल मर्सिडीज बेंज जो ईश्वर ने हमको दी है इसकी कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 220 करोड़ रुपए। कितना? हाँ ज्यादा जोर से नहीं बोली नहीं तो इनकम टैक्स वाले आपके घर में आ जाएंगे। बाप रे 220 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रखा, रिटर्न फाइल नहीं किया। कुछ समय पहले आई वॉज डूइंग ए प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी ऑफ काठमांडू नेपाल, तो सारे प्रोफेसर बैठे थे, तो जब मैंने ये बात कही तो एक प्रोफेसर खड़े होकर कहता सर मेरे मन में एक प्रश्न है सर। तो मैंने पूछा बताइए कौन सा प्रश्न है? बोला सर आपने जो 220 करोड़ बताया वो इंडियन रुपीस में है या नेपाली करेंसी में है? माय गॉड, मैं कहा इंडियन रुपीस, इमीडिएटली कैलकुलेट करने लगे। बोला सर नेपाली करेंसी 350 करोड़ सर। मैंने कहा मोर कॉस्टली नेपाल मोर हैप्पी यू शुड बी इन नेपाल। हाँ सर दैट इज वेरी मच ट्रू, राइट? बहुत सुंदर जीवन मिला है, इसलिए कहते हैं ना जान है तो, थोड़ा जोर से बोलिए जान है तो जहान है। मैं एक बार इंडियन नेवी को प्रोग्राम कर रहा था, जब मैंने पूछा जान है तो एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है, और कमांडर बड़े खुश हो, यस राइट आंसर। बहुत सुंदर जहाज मिला है, इनवैल्यूएबल प्राइसलेस, राइट? और आज हम धीरे से इस खुशी को हम कैसे बढ़ाएं इसको हम जरूर जरूर देखने का प्रयास करेंगे। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, यस। और कहते हैं एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है, कितनी बार? जोर से बोलिए। और आप सभी हमारे ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के हमारे दोस्त सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हो? 3 बार बाबा। आपके संस्कार हमारे स्टूडेंट्स की तरह। मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा भाई कितनी बार मुस्कुराते? एक खड़े होकर कहता सर 3 टाइम्स सर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आफ्टरनून लंच इवनिंग डिनर सर, राइट? आप 3 बार कब मुस्कुराते मुझे नहीं पता, बट मैंने उसको देखकर कहा, मैंने कहा मेरा मजाक उड़ाता है? बोला नहीं सर। तो मैंने कहा ऐसे जवाब क्यों दिया? तो उसने खड़े होकर बहुत सुंदर कहा, उन्होंने कहा सर फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको 3 वक्त का भोजन तो मिलता है, इनफ गुड रीजन फॉर अस टू बी हैप्पी, राइट? अब हम इस जैसे जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है ना दोस्तों, हम लोग जब इस धरती पर आए थे तो बड़े खुश, वी वर इन अ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट ब्लिस, आनंद की एक अवस्था, राइट? और ये आनंद की जो अवस्था है, राइट, इसका जो जिक्र है भगवद गीता में भी है, हे अर्जुन, राइट, जय पराजय सुख दुख हानि लाभ, राइट, मान अपमान पर भी हे अर्जुन इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस, इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ कंट्रोल। अगर आप उस अवस्था में हैं तो यस, आप बहुत खुश हैं। चलिए हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं फॉर हेल्पिंग अस टू इंक्रीज द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। अभी थोड़ा सीधे बैठे, या एक्सरसाइज मैं हमेशा करता हूं क्योंकि जहाज है ना, तो जहाज का थोड़ा एक्सरसाइज भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है? ओके, हमारे सारे शरीर का एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथों पर है। हाँ, हाथ नीचे रखिए, ये तो आपका हाथ दुखेगा। हाँ, लेफ्ट हैंड लेना, अपने इंडेक्स फिंगर लेना, उसको 3 बार टैप करना, पहले देख लेना, नहीं तो आपका हाथ दुखेगा, है ना? और एक शब्द कहना है, राइट? वाह 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 जिंदगी वाह। हाँ, सभी करिए, वेरी गुड। मैक्सिमम लोग तो ठीक कर रहे हैं, आप कुछ लोग वाह 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 जिंदगी काहे का वाह वाह। अभी मैं फिर से कहता हूं, राइट? और अगर मैंने किसी भी ट्रांसपोर्टर ट्रैवल विंग के हमारे दोस्त को वाह वाह करते हुए देखा तो मैं बड़े प्यार से आपको यहां बुला लूंगा, ये गुलदस्ता देकर आपका अच्छी तरह सम्मान करूंगा और सबके सामने करना पड़ेगा, ठीक है? राइट, डोंट वरी डोंट वरी, मैं किसी को बुलाने वाला नहीं, भाई जहाज आपका है, राइट? करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो। लेकिन जितना आप खुशी से करते हैं ना, योर ब्रेन स्टार्ट्स रिलीजिंग दिस हैप्पी हार्मोन्स, इसको एंडोर्फिन्स कहते हैं, एनकेफलिन्स कहते हैं। इट पंप्स अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, एक अच्छी फीलिंग आती है। यस, काफी लोग कहेंगे स्वामी भाई इतना जीवन में प्रॉब्लम, इतना संघर्ष है, हम कैसे खुश रहें? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेकिन कहते लाइफ इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑप्शंस, लाइफ इज अ क्वेश्चन ऑफ चॉइस। मैं दो ऑप्शन देता हूं, ये दोनों ऑप्शन को देखकर आप चूज करना। एक ऑप्शन है कि इतने सारे प्रॉब्लम है, ये सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, और दूसरा, अगर मैं खुश रहता हूं तो ये सारी परिस्थिति को सामना करने के लिए मेरे अंदर शक्ति आ जाती है। बताइए दोनों ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा है, पहला या दूसरा? माय गॉड, वेरी बुद्धिशाली, राइट? अब ये एक थ्योरी है, एक हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस को धीरे से एक्सप्लोर करना, राइट? इस पर थोड़ा सा खोज करना, फिर इसको एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना और इसका अनुभव करना। कहते हैं there was a person whose name was Norman Cousins. He was editor of the Saturday Review for 35 years. एक ऐसा रोग आ गया जिसका कोई उपचार ही नहीं था। ये संसार में कहते हैं सबसे बड़ी परीक्षा जब एक व्यक्ति मृत्यु के नजदीक होता है। Norman Cousins को जब बताया गया डॉक्टर्स कि आप मृत्यु के बहुत नजदीक हो, तो बेड में लेटा हुआ था, बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, बिकॉज इट वॉज अ डीजेनरेटिव टिश्यू डिजीज। बचपन का एक दोस्त आया उसका, वो आकर Norman Cousins के साइड पर बैठा, है ना, बेड में बैठा और क्या किया, बचपन की कहानियां सुनाने लगा, बचपन की कहानी, स्कूल में जब वो खेलते थे, कूदते थे, दौड़ते थे, ये सारी कहानियां सुनाने लगा। और अचानक Norman Cousins के दोस्त ने देखा कि उसका हाथ धीरे धीरे हिल रहा है, तो उसके दोस्त ने क्या किया, अपने सारे क्लासमेट्स को फोन किया और कहा प्लीज कम एंड मीट Norman। तो उनके दोस्त ने सभी ने कहा नहीं, वो तो मृत्यु के नजदीक है, हम आकर क्या बोलेंगे, कैसे उसको सांत्वना देंगे, कैसे उसको शक्ति देंगे, हम खुद भी वो सीन नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारा प्रिय बचपन का दोस्त है। तो वो दोस्त ने सभी क्लासमेट्स को कहा नहीं आप आओ, बस उसके नजदीक बैठकर बचपन की कहानियां सुना, बस वही करना है और Norman Cousins सुन पाएगा, राइट? उनके सारे दोस्त आए, बचपन के दोस्त बैठे और बचपन की बस कहानियां सुनाने लगे। एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, Norman Cousins रिटर्न टू फुल टाइम वर्क, वो पूरी तरह ठीक हो गए और इन्हें दो किताबें लिखी है फॉर द एंटायर मेडिकल फ्रेटर्निटी। नंबर 1 एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस एंड नंबर 2 द हीलिंग हार्ट। वो अपनी किताब में लिखते हैं, इट्स नो लाफिंग मैटर, हंसी में हंसी मजाक उड़ाने की बात नहीं है ये, इट्स नो लाफिंग मैटर, बट स्माइल योर वे टू हेल्थ वेल्थ एंड सक्सेस। जीवन एक बहुत छोटी सी यात्रा है। ये 2-3 दिन के प्रोग्राम के बाद जब आप फिर से ट्रेन में चढ़ेंगे, बस में चढ़ेंगे, तो आप देखेंगे जब जैसे आप लगेज लेकर आते हैं तो देखते हैं वहां पूरा लगेज भरा हुआ है, राइट? नीचे भी भरा, इस तरफ भी भरा और आपका भी बड़ा सा बैग। अगर आपने ये मेडिटेशन देखा है, सीखा है, समझा है, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ट्रेन से स्टार्ट करना, रिएक्ट नहीं करना, ठीक है? सबका लगेज भरा हुआ है, सब लोग सेटल हो रहे हैं, शांति से, प्यार से, उसको धीरे से सेट करिए। अगर आप वो सेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जीवन को सेट कर रहे हैं, राइट? ये मैं और किसी कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं अपना संस्कार बता रहा हूं। पहले जब मैं ट्रेन में चढ़ता था, कुछ भी होता तो इमीडिएटली गुस्से से बोलना। अब मैं किसी लोगों को जानता भी नहीं हूं। थोड़े समय की यात्रा है, 6 घंटे की यात्रा होगी, 15 घंटे की यात्रा होगी, एक बार अपने लड़ाई झगड़ा कर लिया, फिर बैठे हैं, फिर एक दूसरे का है ना आपस में घूर के देख रहे हैं। अभी तो मोबाइल हो गया, इसलिए सारे समय मोबाइल में रह सकते हैं, पहले तो वो भी सिचुएशन नहीं था, राइट। धीरे से यहां पर ये 3 दिन का ना हमको एप्लीकेशन होना चाहिए, और खास क्योंकि करके हम सभी जो ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल विंग से जुड़े हुए ना, ये आप जरूर जरूर करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। चलिए, तो ये था नॉर्मन कजिन्स की एक सुंदर यात्रा, जहां उनके बचपन के दोस्त आए थे, राइट। उनको वो पूरी तरह कैसे है ना, और ही वॉज द फर्स्ट, कहते हैं ही इज द पर्सन हु कॉइंड दैट स्माइल लाफ्टर जॉय इज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। आजकल खुशी जो है ना एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह आ गया। हम भी आपको बचपन की यात्रा की तरफ लेकर जाते, देखो सभी लोग अपना फोटो देखना, आनंद की अवस्था है ना, हम और आप ऐसे ही थे दोस्तों। फिर धीरे से फिर देखिए, या हमारी सब ये कहानी है। फर्क नहीं पड़ता है कि हम काले हैं या गोरे, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि हम अमीर हैं या गरीब हैं, हम सभी जो थे ना इतने ब्यूटीफुल आनंद की अवस्था में थे। अब ये तो हम लोग हैप्पीनेस के साथ हम लोग यहां जन्म लिए, अब धीरे से हैप्पीनेस की फिलॉसफी कहां चेंज हुई, साइलेंटली वी स्टार्टेड लूसिंग हैप्पीनेस। कहां हुआ, 1 साल हुआ तो माता पिता ने बड़े बहुत प्यार से हमें हैप्पी बर्थडे विश किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। धीरे से कहां फिलॉसफी, कहां वो फ्लो चार्ट गड़बड़ हुआ, कहां से वो इनसाइड आउट अप्रोच हुआ, जहां पर पहली बार हमें गिफ्ट दिया गया, बर्थडे गिफ्ट। गिफ्ट लेना या देने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो गिफ्ट दिया गया, जो देने वाला, अब छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा उसको थोड़ी ना प्रॉब्लम है, लेकिन जो देने वाला व्यक्ति है, चाहे माता पिता हो चाहे कोई रिश्तेदार हो, जब उन्होंने गिफ्ट दिया वो ये भूल गए कि ये बच्चा खुद में एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, एक अमानत है। और धीरे से हमको लगा ये गिफ्ट देने से बच्चे की हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगी, हमारे में संकल्प ये था, और धीरे धीरे बच्चे में ये संस्कार आने लगे, और हमको लगता था हैप्पीनेस तभी होगा जब कोई ना कोई हमें गिफ्ट देगा। हमने भी गिफ्ट लेना आरंभ किया, देना लेने देने का आरंभ किया, सारा ये प्रोडक्ट्स पर आ गया, और उनकी जो जरूरत के खिलौने थे हम लेने लगे, और ऐसे सिचुएशन में याद आता है कि बचपन के दिन बहुत ब्यूटीफुल थे। अब धीरे से आगे बढ़ते हैं, राइट। जब बच्ची बड़े होने लगी तो उसको हैप्पी बर्थडे के दिन ड्रेस लिया गया, राइट, उसको टॉय दिए गए, राइट। आप में से कितने माता पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कहा होगा, तू अगर क्लास में फर्स्ट आएगा तो मैं तेरे को साइकिल खरीद के दूंगा। वाओ, देखा, बहुत अच्छा, और यही गड़बड़ हुआ है, राइट। राइट, अगर बच्चे की जरूरत हो तो आप जरूर खरीद के दो, सो कंडीशंस फिक्स नहीं करो, डोंट फिक्स अप अ कंडीशन। बच्चे तेरे को साइकिल की जरूरत है, जरूर तेरे माता पिता खरीद के देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ यू कम फर्स्ट और यू कम 10th। जैसे ही हम हैप्पीनेस को कंडीशनल बनाने लगते हैं, धीरे धीरे फिर वो बच्चा क्या करता है, साइकिल के लिए बिकॉज ही हैज टू स्टैंड फर्स्ट, वो कोई भी मैकेनिज्म अपनाने लगता है, और हमको पता ही नहीं चलता है कि बच्चों की साइकोलॉजी पर हम कितना बड़ा एक चेंज लेकर आते हैं। और ऐसे समय पर वो बचपन के दिन बहुत ब्यूटीफुल थे। अब धीरे धीरे ये फ्लो चार्ट चेंज होते होते हम आगे बढ़ते हैं, राइट। और वही बचपन के खिलौने जब हम बड़े होते हैं उसी खिलौने से खेलने लगते हैं, राइट। आजकल जो है मोबाइल सिर्फ एक एडिक्शन नहीं है, राइट। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली कहता है आजकल के बच्चों में हर 6 महीने में नया मोबाइल लेने की इच्छा जागृत हो रही है, नया नया फीचर्स, 2G के बाद 3G, 3G के बाद 5G, ये सिस्टम वो सिस्टम, बाप रे, एवरी 6 months to 8 months एक नया मोबाइल लेकर आने की। सारा जो फोकस है प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो गया है। फिर धीरे धीरे वो मोबाइल के बाद धीरे धीरे से लैपटॉप पर आता है, हमको लगता है हमें बहुत पढ़ाई करेंगे, बहुत डिग्रियां मिलेगी तो हम खुश रहेंगे, कंडीशन सप्लाई, राइट। अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, अच्छे से अच्छा हमको जॉब मिल जाता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन पर भी जब यहां पर पहुंचते हैं, राइट, हमको लगता है वो बचपन के दिन बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत वंडरफुल थे, राइट। फिर हम धीरे से आगे बढ़ते हैं, हमको बहुत सैलरी मिलने लगता है, राइट। हम वही बचपन का जो टॉय था, धीरे से हम बड़े बड़े कार में आ जाते हैं, राइट, बहुत अच्छे हमारे पास बंगलो हो जाते हैं, बहुत अच्छा परिवार आ जाता है, और ऐसे समय पर वो बचपन के दिन बहुत ब्यूटीफुल थे। धीरे से आगे गाड़ी बढ़ती है, राइट, वृद्धावस्था में आते हैं, है ना, दो बच्चे, चार बच्चे, चारों बच्चे चारों दिशाओं पर, फिर जीवन साथी के साथ अकेले, कभी ना कभी अकेले हो जाते हैं, तब महसूस होता है वो बचपन के दिन बहुत ब्यूटीफुल थे, राइट। दिस इज अ वेरी हैप्पी फैमिली का जो चित्र है, लेकिन जीवन के कुछ रियालिटीज हैं, और ऐसे संदर्भ में मैं आज आपको, क्योंकि जब हम खुशी का इजहार करने के लिए आजकल क्या करते हैं, लोग बहुत ज्यादा वेकेशन पर जाते हैं, राइट। और मैं पिछले महीने यहां पे गॉडलीवुड स्टूडियो में बच्चों का प्रोग्राम कर रहा था, तो मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिल रहे थे। जब मैं पेरेंट्स से मिल रहा था तो पेरेंट्स ने कहा, वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर स्ट्रेस टुडे इज वेकेशंस, राइट। तो मैंने कहा, वेकेशन में क्यों स्ट्रेस होता है? बोला, आजकल बच्चे जो होते हैं आपस में डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि हमारे क्लासमेट्स ऑस्ट्रेलिया गए थे, स्वीडन गए थे, यहां गए थे, वी ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू अ फॉरिन ट्रिप। वेकेशन हैज ऑल्सो बिकम ए मेजर कॉज फॉर स्ट्रेस। हमको लगता है वेकेशन में जाने से हमको बहुत खुशी मिलेगी, दिस इज वॉट वी हैव ऑलवेज बिन थिंकिंग, राइट। फॉरेन में जाएं या नहीं जाएं, लेकिन कहते हैं भारत में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर वेकेशन इज केरला। एज पर बीबीसी रिपोर्ट्स, सबसे ज्यादा जो पिछले साल टूरिस्ट जो भारत के किसी भी देश, किसी भी राज्य में आए, दैट वॉज केरला। केरला वॉज द मोस्ट प्रिफर्ड लोकेशन टिल लास्ट ईयर। और करीब तीन महीने पहले केरला के जो टूरिज्म वेबसाइट में सबसे ज्यादा हिट हुआ, और इसके लिए केरला के टूरिज्म सेक्रेटरी को प्राइज दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि आपने वेबसाइट इतना अच्छा बनाया, उसमें इतने अच्छे वीडियोस लगाए, जिसके कारण सबसे ज्यादा आपके वेबसाइट के में हिट हुआ, एंड देयरफॉर यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, राइट। ये हमने सबने देखा है पिछले साल के, अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो बिजनेस टुडे कहता है कि पिछले साल ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, टूरिज्म सेक्टर इन केरला का जो टोटल टर्नओवर था वाज 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ का टर्नओवर था। ये कब तक था? 10 अगस्त 2018। 11 अगस्त से केरला में बारिश आरंभ हुई, एक हफ्ता केरला में बारिश हुई, राइट। और अब केरला के बहुत न्यूज आपने देखा, बहुत सारे वीडियोज देखा, बहुत सारे मैसेजेस आपके पास आए, आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। केरला में बारिश के पहले मैं वहां पे था, फिर वापस मेरा एक रिट्रीट प्रोग्राम शांतिवन में था, तो उस समय जब मैं वहां पहुंचा तब मुझे पता चला केरला में इस तरह से आंधी तूफान और बारिश हुआ, तो फिर से मैं केरला वापस गया, अभी मैं आपके पास केरला से ही आ रहा हूं, राइट। आप सभी ने उस केरला का सिचुएशन सिर्फ पढ़ा नहीं, देखा नहीं, आपने अपने हिसाब से भी केरला को पूरी तरह से सहयोग दिया, इसलिए मैं केरला के लोगों की तरफ से आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद भी देना चाहूंगा, आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस का धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने जो तन मन धन से सेवाएं की, उसके लिए मैं बड़े प्यार से धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन केरला का सिचुएशन देखकर, उसको स्टडी कर कुछ बातें हमें सीखने और समझने को मिली, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। केरला का इतना सुंदर का पिक्चर, लेकिन 4 या 5 दिन के बारिश में वो पूरी तरह से पिक्चर चेंज हुआ। मैं बस आपको ज्यादा फोटोग्राफ्स नहीं दिखाकर डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ एक फोटोग्राफ जरूर दिखाना चाहता हूं, राइट। ये सारे सीन्स केरला के ये हैं। बिजनेस टुडे का नेक्स्ट रिपोर्ट कहता है कि 6 दिन के बारिश में केरला में ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में जो पूरा लॉस हुआ है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 35,000 to 40,000 करोड़ रुपए। चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो टूरिस्ट स्पॉट बारिश में पानी में भरा हुआ है, चाहे जितनी गाड़ियां पानी में आई हैं, वो सारा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बिजनेस टुडे का फिगर इज 30,000 crore to 40,000 crore। ऐसा सिचुएशन, जब ये परिस्थिति आती है तो कुछ बातें हमको सीखने को मिला, समझने को मिला। दोस्तों, आज जो प्रकृति हम बाहर देख रहे हैं, राइट, वो प्रकृति जो है, नेचर आउटसाइड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर इनसाइड। बाहर की प्रकृति वो अंदर की प्रकृति का प्रतिबिंब है, राइट। जब इतनी बारिश आती है, इतना आंधी तूफान आता है, इतना भूकंप आता है, तो हम कहते हैं प्रकृति इतना गुस्सा क्यों कर रही है, राइट। लेकिन सुबह से शाम तक मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, ये समझना बहुत जरूरत है। आप में से कितने भाई बहने यहां बैठे हैं जिनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, वो जरा हाथ उठाएं। हमारे एक भाई साहब, इनके लिए जरा जोर से तालियां बजाइए। वेरी गुड। आप अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर जरूर देना, ठीक है? आई विल अपॉइंट यू एज एन हैप्पीनेस कंसल्टेंट। वेरी गुड। राइट, हमको लगता है भूकंप आ रहा, धरती में इतना गुस्सा क्यों कर रही है, और मेरे मन के अंदर का गुस्सा, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको इस जल तत्व को अगर देखकर हम समझने की कोशिश करें, तो मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाता हूं जिस वीडियो के द्वारा हमको पता चल सकता है कि यस, हमको अपनी अंदर की प्रकृति को ठीक करना पड़ेगा। और जब हम अपनी अंदर की प्रकृति को ठीक करेंगे तो बाहर की प्रकृति ठीक होगी। एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किया गया, एंड दिस एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाई डॉक्टर मैसरो इमाटो, जापानीज वैज्ञानिक है। उन्होंने क्या किया, 3 ग्लास पानी लिए और तीनों ग्लास में क्या किया, पानी के अंदर राइस पार्टिकल डाल दिए, चावल का पार्टिकल, और तीनों ग्लास में राइट 3 जगह रखा और हर दिन जाकर उनको एक शब्द बोलते थे। देखिए, डॉक्टर इमाटो हैज कंडक्टेड अनदर इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। आपको आवाज सुनाई दे रही है? थोड़ा ऑडियो जरा बढ़ाएंगे। सॉरी, आप मुझे ऐसा होगा ना तो इट्स मुझे देखिए।
एक्सपेरिमेंट, ही प्लेस्ड राइस इनटू 3 ग्लास बीकर्स,
तीनों ग्लास में राइस पार्टिकल डाल दिया, पानी भर दिया, और पहले वाले को जाकर हर दिन कहा थैंक यू, धन्यवाद, दूसरे को जाकर कहा यू आर एन इडियट, आप बेवकूफ हो, और तीसरे को बिल्कुल माइंड ही नहीं किया, कंप्लीटली इग्नोर्ड इट। 1 महीने के बाद, पहला वाला राइस जिसमें थैंक यू कहा, धन्यवाद किया, वो फर्मेंट होने लगा और अच्छा सुगंध आने लगा, और दूसरा वाला जिसको यू आर एन इडियट बोला वो काला होने लगा, और तीसरे वाला जिसको माइंड ही नहीं किया वो पूरी तरह सड़ने लगा। डॉक्टर मैसरो इमाटो कहते हैं, किताब लिखी उन्होंने, वाटर टॉक्स, पानी बातें करती है, वो कहते हैं कि पानी का प्रभाव जल तत्व पर, प्रकृति के 5 तत्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे संकल्पों का पड़ता है। हम जैसे संकल्प करते हैं वो हमारे पूरे प्रकृति के 5 तत्व, विशेष जल तत्व। आप एक काम करना दोस्तों, एक्सपेरिमेंट करना, आप में से कोई अगर विज्ञान का विद्यार्थी हो, अपने घर जाना, 3 ग्लास बीकर 3 कोने में रखना और ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, और फिर डॉक्टर मैसरो इमाटो का किताब पढ़ना, वाटर टॉक्स। हमारे वाइब्रेशंस पानी के क्रिस्टल को चेंज कर सकते हैं। अगर आप 3 महीने, 1 महीने से 3 महीने अगर आपने डिसाइड कर लिया कि घर में सारे फैमिली मेंबर्स शांति प्रेम खुशी से रहेंगे, ये डिसाइड कर लिया आपने कि चाहे कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करेंगे, अगर आपने डिसाइड कर लिया, फिर आप 3 महीने के बाद आपका घर का वास्तु का चेक करना, और आप देखेंगे कोई भी आपके घर में आएगा तो एक बहुत अच्छा फीलिंग करेगा, बिकॉज आपके संकल्प घर का वास्तु को जरूर जरूर ठीक करते हैं। जब केरला में ये फ्लड आया तो सबने अपने अपने तरीके से इसको देखने का कोशिश किया, राइट? लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस आए जिसमें बहुत कुछ चीज सीखने को मिला कि कहीं ना कहीं हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए, आंतरिक प्रकृति को छोड़ दिए। नाउ दिस इज वन ऑफ द सीन, राइट? ऑल दीज पिक्चर्स एंड वीडियोज आर ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पज, रियल व्यक्ति को हम लोगों ने नहीं दिखाया, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पज। एक बहुत सुंदर वायरल हुआ वीडियो और ये मैसेज बहुत केरला में प्रचलित हुआ। करीब 1-2 साल पहले एक बहन ने बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदने के बाद जब गाड़ी खरीद लिया, गाड़ी उनको डिलीवरी मिल गई, जब वो गाड़ी चलाने लगे तो देखा कि केरला के रोड्स बहुत छोटे हैं, तो इस बहन ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ केरला के अगेंस्ट में केस फाइल किया, और केस ये फाइल किया कि मेरी गाड़ी इतनी बड़ी है, मेरी इतनी बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए आपके रास्ते बहुत छोटे हैं, और फोटो वोटो खिंचाए कि मैंने केस फाइल किया, और केस बड़ा वायरल हुआ, लोगों ने बहुत व्हाट्सएप में देखा उसको, है ना, कमेंट भी किया। अब ये तो 2-3 साल पहले की बात है, अब बारिश इतनी होकर क्या हुआ, वो सारा जो पानी था बहन जी के घर के अंदर, और बहन जी को बहुत अच्छे पतीले में भरते हुए वापस लेकर आए, और वो मुस्कुराते हुए बाहर आए और नीचे लिखा हुआ था, आप रास्ते के लिए ढूंढ रहे थे ना, देखो प्रकृति ने वो पानी का रास्ता एकदम घर तक लेकर आए, और बड़े प्यार से आप बाहर निकलिए, राइट? कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इतना अहंकार आ जाता है, हमको लगता है वी कैन कंट्रोल नेचर। नहीं, प्रकृति को कंट्रोल नहीं करना है, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है। अपनी प्रकृति को है वो जरूर जरूर कंट्रोल करना है। एक और केस स्टडी बड़ा इंटरेस्टिंग था, माता पिता और बच्चे, उनके साथ वृद्ध सीनियर सिटीजन, उनके माता पिता, ये परिवार का माता पिता के साथ मैच नहीं हो रहा है, केरला की घटना है। तो क्या किया परिवार ने, क्या किया, वृद्ध माता पिता को ओल्ड एज होम में रख दिया कि भाई नहीं जमता आपसे, तो राइट वो ओल्ड एज होम में और बच्चे और एक परिवार में राइट घर पर। अचानक बारिश आई, इतनी बारिश आई कि जो परिवार जो ओरिजिनल घर था वो भी पानी के अंदर, वृद्धाश्रम वो भी पानी के अंदर, सभी के सभी रिलीफ कैंप में आई लव यू, ये वाला सिचुएशन राइट। ये सत्यता है। केरला में हमको बहुत कुछ चीज सीखने को मिला। हम केरला के लोगों को लगता था ये बारिश और आंधी और तूफान सिर्फ नॉर्थ में होता होगा, उत्तराखंड में होता होगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वेस्ट बंगाल में होता था हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ओडिशा में होता तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था, हमको लगता था केरला इज गॉड्स ओन कंट्री, हमको इतना अहंकार आ गया था। लेकिन प्रकृति की आंधी तूफान ने शायद हमको इस बात पर सोचने पर मजबूर किया, कहीं ना कहीं हम अपनी आंतरिक प्रकृति को खो बैठे। अब ये सिचुएशन सब जानने के बाद कुछ रहस्यों को हम लोग ये समझे, ताकि प्राकृतिक आपदा का हम इंतजार नहीं करें। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सीक्रेट एप्लीकेशन इन लाइफ कि हम जो खुशियां ढूंढ रहे हैं वो बाहर नहीं है, इट्स ऑलवेज इनसाइड। इसलिए यहां पर आप सबको सिखाया गया मैं कौन हूं, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा आप कौन है तो क्या जवाब देंगे, राइट कौन है। अच्छा एक काम करना, यहां पर बैठकर एक नया डेफिनेशन सीखना, और घर में जब जाएंगे ना तो बच्चों के साथ ये डेफिनेशन जरूर जरूर बताना। ये कौन सा डेफिनेशन है, सभी थोड़ा सीधे बैठे और सभी मेरे साथ बोलिए आई, थोड़ा जोर से बोलिए आई, थोड़ा प्यार से बोलिए आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे ही मैं कहता हूं मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं तो मेरी हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़ती है, इसको आप स्वयं समझना, घर में जाकर बच्चों को समझाना, ठीक है। मैं आपको समझाने के पहले मुझे थोड़ा प्यास लग रहा है, क्या मैं थोड़ा पानी पी सकता हूं, यस और नो, यस यस और नो, यस थैंक यू वेरी मच विथ योर परमिशन। अच्छा आप में से कितनों को लगता है कि ये पानी पीने से स्वामी भाई को खुशी मिलेगी, वो जरा हाथ उठाओ। अच्छा वेरी गुड, कुछ भाई तो दोनों हाथ उठा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, ठीक है ठीक है राइट। अब कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, तो एक काम करना जब मैं पानी पीऊंगा ना तो स्वामी भाई का चेहरा देखना है फिर हाथ उठाना, ठीक है। बाप रे इतना प्यास लग रहा था, आपने परमिशन भी दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब बताइए आप में से कितनों को लगता है स्वामी भाई ये पानी पीने से मुझे खुशी मिली, वो हाथ उठाओ, राइट थैंक यू ना, आपका चेहरे मेरे चेहरे में भी दिखाई दिया। अच्छा अब नाउ दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज टुडे इवनिंग कि स्वामी भाई को पानी पीने से खुशी मिलती है। अब जैसे ये समाचार हमारी आदरणीय दिव्या दीदी जी को पता चलेगा, अच्छा स्वामी भाई को पानी पीने से खुशी मिलती है, फटाफट एक गिलास वो नींबू पानी यहां भिजवा देंगे, तो बहन लेकर आएंगे बोले दीदी ने कहा है कि आप नींबू गिलास का पानी पीएंगे, नहीं पानी पी लिया भाई, नहीं 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 दीदी ने कहा है, अब दीदी ने कहा है तो मैं कैसे भी मना करूं, ठीक है दीदी ने कहा तो ये गिलास तो पानी पी लिया, अब मैं नींबू का पानी पीऊंगा, टक ढक ढक ढक। अच्छा धीरे से ज्ञान सरोवर में सब जगह न्यूज मिलेगा कि स्वामी भाई को पानी पीने से खुशी मिलती है, राइट। हमारे दादी जी को पता चलेगा, दादी जी कहेंगे अच्छा स्वामी भाई केरला से आए, उनके काम करो एक गिलास नारियल का पानी पिलाओ, अब मैंने ये पानी पी लिया नींबू का पानी पी लिया, अब जैसे ही तीसरा गिलास नारियल का पानी लेकर आऊंगा, आप बताइए दोस्तों वो तीसरे गिलास पानी पीने में आप में से कितनों को लगता है स्वामी भाई को खुशी मिलेगी, वो हाथ उठाओ। अब कोई भी हाथ नहीं उठाता है, आपने तो कहा था पानी पीने से खुशी मिलती है, एक मिनट के अंदर चेंज कर लिया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस फंडामेंटल लॉ, प्लीज घर में जाकर बच्चों को समझाना, राइट ये फंडामेंटल लॉ सैद्धांतिक सत्य। एक होता है गाड़ी, दूसरा होता है ड्राइवर। गाड़ी की जरूरत अलग, ड्राइवर की जरूरत अलग। शरीर 220 करोड़ का मर्सिडीज बेंज की गाड़ी है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, बचपन में आपने फिल्म देखी थी रोटी कपड़ा और मैंने अपने स्टूडेंट से कहा, तो एक ने खड़े होकर कहा सर ये पुराना सिलेबस हो गया। मैं कहा नया सिलेबस आप बताइए। बोला सर रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल। सर शरीर मोबाइल है, घूमता फिरता रहता है, गाड़ी है, लेकिन आत्मा ड्राइवर है। रोटी कपड़ा मकान ये गिफ्ट ये शरीर की जरूरत है, लेकिन आत्मा की जरूरत क्या है? शांति, प्रेम, खुशी, राइट। मुझे प्यास लगा, ये शरीर की रिक्वायरमेंट थी। जैसे ही मैंने पानी पिया, शरीर में जो पानी का कंटेंट जब मैच हुआ, शरीर तृप्त हो गया। उससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। आज हमको लगता है मुंबई में वन बेडरूम हॉल किचन है, जब एक बंगलो आएगा तब मैं खुश रहूंगा। लोनावाला में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बड़ा बंगलो खरीद देते हैं। जब वन बेडरूम हॉल थे तब भी खुश रहिए। लोन लेके कैसे भी बंगलो खरीदिए, खरीदिए, सब खरीदिए, कुछ मना नहीं है, लेकिन यह महसूस करना बंगलो आएगा तब मैं खुश रहूंगा, नो, दैट इज अ रॉन्ग फिलॉसफी। मैं आत्मा हूं ही शांत स्वरूप, मैं आत्मा हूं ही सुख स्वरूप, मैं आत्मा हूं ही आनंद स्वरूप। यह बाहर ढूंढने की बात नहीं है, मैं हूं ही आनंद स्वरूप। दैट फंडामेंटल लॉ कहीं ना कहीं सीखना बहुत जरूरत है। और जैसे ही आप इस ज्ञान सरोवर के कैंपस से बाहर निकलेंगे, जैसे आप होर्डिंग देखेंगे, सारा होर्डिंग, सारा एडवर्टाइजमेंट हमारी अंदर की खुशी को बाहर लेकर जाता है। सारा जो एडवर्टाइजमेंट बन रहा है, इतना मार्केटिंग हो रहा है, और धीरे धीरे आपको लगता है ये सब आने से मुझे खुशी मिलेगी। सब आ भी जाता है, कहां खुशनुमा। आप देखिए ना दोस्तों, आज अगर अपने लाइफ को चेक करिए, 10 साल पहले आप अपने आप को कंपेयर करिए, 10 साल पहले क्या था, आज आप क्या हैं, राइट। 10 साल पहले स्कूटर था तो आज आपके पास गाड़ी है। 10 साल पहले छोटा सा घर था, आज आपके पास बड़ा घर है। 10 साल पहले छोटे छोटे आपके बच्चे थे, आज बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया। अब अपना हैप्पीनेस इंडेक्स को चेक करिए, आज 2018 में आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा क्या, आपका पीस इंडेक्स बढ़ा क्या, आपका है ना पावर का इंडेक्स बढ़ा क्या। आपने ये जो भी अपनाया ना, उसके लिए आपने मेहनत की है। बिना मेहनत आपका स्कूटर से कार नहीं पहुंचे, बिना मेहनत आपका वन बेडरूम हॉल किचन बंगलो नहीं बना। आपने मेहनत की, लेकिन वो सारा मेहनत बाहर के लिए किया, कितना समय इसके लिए मैंने किया, अपने आप से विचार करिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है एप्लीकेशन इन लाइफ। एक तो है खुशियां बाहर नहीं है, खुशियां अंदर है। दूसरा जो है हैप्पीनेस का फिलॉसफी है, हमेशा खुशी जो है हम लोग ने कंडीशनल रखा है। कैन आई हैव एन अनकंडीशनल लव, राइट। सभी थोड़ा सीधे बैठे, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगा, सब मेरे साथ करना। हाँ सभी मेरे साथ बोलिए, ठीक है, है ना। सुख दो सुख लो, शांति दो शांति लो, ज्ञान दो ज्ञान लो, दुआएं दो दुआएं लो, खुशी दो खुशी लो। हाथ नीचे रखिए। कितनों को एक्सरसाइज अच्छा लगा वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा एक्सरसाइज, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये एक्सरसाइज बिल्कुल ठीक नहीं था, गलत एक्सरसाइज था। आज तक यही कर रहे हैं, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, राइट। आप शादी में जाते हो ना तो किसी को 1000 रुपए देते हो, तो आप नोट करते हो 1000 रुपए दिया भाई शादी में, राइट। फिर 3 साल के बाद अपनी बेटी की शादी है तो कंपेयर करते, भाई कितना दिया। एटलीस्ट 3 साल में इन्फ्लेशन तो बढ़ गया ना, 1100 रुपए तो देना चाहिए। 3 साल का इन्फ्लेशन तो चेक करो। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। राजयोग इज जस्ट ऑपोजिट। गिव एंड टेक में थक जाएंगे। मैं इतना अपने फैमिली के लिए कर रही हूं, वे एक शब्द प्यार से मुझसे नहीं बोल सकते क्या, मैंने किया मुझे वापस चाहिए। थक जाएंगे एक दिन, थक जाएंगे। व्हाट इज द राइट फिलॉसफी? इट्स नॉट गिव एंड टेक, इट्स टेक एंड गिव, टेक एंड गिव। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने केरला के कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए, अब मैं आपको केरला में बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा। इट्स सो ब्यूटीफुल। हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था ये जो है ना, मैं आपको रीड करता हूं। अ त्रिशूर टेम्पल ऑफर्स इट्स हॉल फॉर मुस्लिम्स टू प्रे, अ मॉस्क इन मलप्पुरम शेल्टर्स हिंदू फैमिलीज। केरला इज अ वेरी पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट, केरला इज अ वेरी कम्युनली सेंसिटिव स्टेट, लेकिन आंधी तूफान बारिश ने, राइट, हमको जीवन का एक सैद्धांतिक सत्य सिखाया। यहां पर माला करके एक जगह है, सदर्न पार्ट ऑफ त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट, वहां का जो मंदिर में वहां के जो मुस्लिम्स भाई लोग थे उनको प्रे करने की जगह नहीं मिली, तो वहां का जो टेंपल मैनेजमेंट, द नेम ऑफ द टेंपल नीचे लिखा है रत्नेश्वरी टेंपल, बहुत प्यार से वो हॉल दिया। और सारे मुस्लिम भाई उस मंदिर के हॉल में आकर अपना है ना जो रोजा है वो किया। एक तरफ वो समाचार भी मिला और दूसरे तरफ इतना ब्यूटीफुल समाचार भी। ये 2005 का मुंबई फ्लड्स हो या केरला का फ्लड हो या विश्व में कहीं पर भी आपदाएं आती है, आपदा आते वक्त ये स्नेह प्यार करुणा दया रहम अपने आप जागृत होता। भाई अभी तक जागृत क्यों नहीं था? वो है अंदर, लेकिन जब आपदा देखते हैं ना, 2005 के मुंबई फ्लड में ये देखा गया, राइट? मुंबई के लोग एक दूसरे को देखते तक नहीं है, लेकिन 2005 फ्लड में देखा गया कि मुंबई के लोगों ने राइट पूरी सब्जी बनाकर रास्ते में लोगों को खिलाया, तो रिपोर्ट लिखा गया। क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने मुंबई फ्लड में देखा कि राइट बहुत बड़े फिल्म एक्टर का मर्सिडीज बेंज भी पानी में, एक गरीब व्यक्ति का साइकिल भी पानी में, तो प्रकृति ने दोनों को दिखाया सत्य क्या है। जब ये सत्य देखते हैं कि हम लोग ने जो ऊंच नीच ये बैरियर्स हैं प्रकृति को आकर तोड़ना पड़ा बहुत सारा। एक और एग्जांपल देता हूं, सेंडिंग अ मैसेज ऑफ कम्युनल एमिटी, अ मॉस्क इन केरला मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट हैड प्रोवाइडेड शेल्टर एंड फूड टू सेवरल हिंदू फैमिलीज डिस्प्लेस्ड बाय द मैसिव फ्लड्स व्हाइल ग्रुप्स ऑफ मुस्लिम मेन हैव असिस्टेड इन क्लीनिंग टू हिंदू श्राइन्स। कितनी वंडरफुल बात हमको सीखने को मिली, समझने को मिली, राइट? चाहे वो चर्च हो चाहे वो मॉस्क हो, इस प्रकार का सीन हमको देगा, ये बहुत ब्यूटीफुल, राइट? मुस्लिम यूथ जाकर टेम्पल्स को क्लीन कर रहे हैं, हिंदू फैमिलीज जाकर मॉस्क को ठीक कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर दृश्य केरला में देखने को जरूर जरूर मिला। प्रश्न ये उठता दोस्तों, क्या मैं अगले आंधी तूफान अगले सुनामी अगले भूकंप का इंतजार करूं? क्या मैं इंतजार करूं, राइट? या मैं अपने अंदर की प्रकृति को महसूस कर ये दुनिया को एक हैप्पी वर्ल्ड बनाऊं? यह हमारे पास चॉइस है दोस्तों, राइट? सो इट शुड बी अनकंडीशनल लव विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और वो है, कभी कभी हमारा हैप्पीनेस इज वेरी लोकलाइज्ड, कैन वी हैव अ वेरी यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी? क्या मैं एक विश्व बंधुत्व की बात को देखूं? ऐसे ही नहीं आप ज्ञान सरोवर पहुंचे, बहुत अलग अलग राज्यों से प्रांतों से आप पहुंचे हैं। आपको क्या लगता है ऐसे ही पहुंच गए? नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल कॉस्मिक ब्लू प्रिंट। और जब आप ये समझ लेते हैं तो किसी से नाराजगी नहीं, नाराज जब आप राज को नहीं जानते हैं तब वो आप एक्चुअली नाराज होते हैं। इट्स सो ब्यूटिफुल, एन ओपन वर्ल्ड बिगन्स विद एन ओपन माइंड, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एक बार हमने ये समझ लिया बात को, अब धीरे से इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को हम हर दिन लेकर आए। तो एक काम करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं और फिर थोड़ा सा हम लोग 3 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। सभी थोड़ा सीधे बैठे, अभी खुशी में आ गए ना, तो वही एक्सरसाइज करते हैं। अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रखना, इंडेक्स फिंगर लेना और बड़े खुशी से कहना, वाह 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 जिंदगी वाह। सभी करिए, वाह 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 जिंदगी वाह, वेरी गुड। अब दो फिंगर लेना और कहना, वाह 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 मेरा परिवार वाह। सभी करिए, वाह 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 मेरा परिवार वाह। तीसरा कहेंगे, वाह 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 ये प्रकृति वाह। सभी करिए, वाह 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 ये प्रकृति वाह। चौथा कहेंगे, वाह ये विश्व वाह। सभी करिए, वाह 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 ये विश्व वाह। लास्ट कहेंगे, वाह ईश्वर वाह। सभी करिए, वाह 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 ईश्वर वाह। हाथ नीचे रखिए। आप में से कौन कौन जब घर वापस जाएगा तो आप में से कौन कौन माता पिता चाहते हैं कि आपके बच्चे हर दिन सुबह बड़े खुशी से उठे? वो जरा हाथ उठाओ। अच्छा, सब चाहते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। हाथ नीचे। आप में से कितने माता पिता चाहते हैं कि हर दिन आपके बच्चे सुबह उठते साथ बड़े खुशी से स्कूल में जाएं? वो जरा हाथ उठाओ। अच्छा, वेरी गुड। आप में से कितने माता पिता चाहते हैं कि आपके बच्चे एग्जाम के दिन बड़े खुशी से मम्मा को कहें, मम्मा बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं बहुत खुशी से एग्जाम लिखकर आऊंगा? वो जरा हाथ उठाए। अच्छा, सब लोग, वेरी गुड। अब भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने भाई बहन हैं हर दिन खुशी से वाओ आज मैं ऑफिस जा रहा हूं ये महसूस करते? हाथ उठाओ, चाहे रेलवे हो चाहे रोडवेज हो चाहे टूरिज्म हो। यस, चाहते तो हो। नहीं स्वामी भाई, एक है ना रोडवेज या रेलवेज में काम करके देखो, जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाते। राइट? भाई रेलवेज में अप्लाई किसने किया था? आपने, राइट? बड़े खुशी से एग्जाम कौन लिखा था? आपने, राइट? फिर जब एग्जाम लिखते वक्त कितनों ने ईश्वर को याद किया? आपने, राइट? एग्जाम पास होने का ईश्वर से कितना प्यार से बातें की, प्लीज भगवान रेलवे का नौकरी मिल जाएगा तो आनंद ही आनंद, आपने प्रार्थना की थी। अब आपको नौकरी मिला ना, हर दिन खुशी से, चाहे रोडवेज में हम सेवा कर रहे हैं, चाहे रेलवे में सेवा कर रहे हैं, चाहे हम टूरिज्म, कोई भी क्षेत्र हो, राइट? मैं सभी बहनों को भी रिक्वेस्ट करता, हैप्पीनेस को बढ़ाना ना, तो हर दिन घर में जाना, किचन में जाना, बड़े खुशी से आनंद के साथ भोजन बनाना। अगर आपने गुस्से से भोजन बनाया, यही मेरा जीवन है, क्या जिंदगी भर में भोजन बनाते रहूं, गया गया, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट, अन्न का मन पर प्रभाव। डॉक्टर मैसरो मैटो को देखा ना चित्र, राइट? बहुत जरूरत है। तो आप में से कितनी माताएं बड़े खुशी से भोजन बनाएंगे, बजरा हाथ उठाओ, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड, राइट? कौन भाई लोग फिर क्या करेंगे? खाएंगे, अभी तक तो वही करते रहे। एक काम करना, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अच्छा खुशी खुशी खाइए, वेरी गुड, वेरी अच्छा, कैसा भी बनाओ खुशी खुशी खाइए, अच्छा अच्छा वो वेरी गुड। एक काम करना, खुशी खुशी से भोजन करना, आप करते भी हैं, लेकिन जब अगली बार भोजन करें ना, मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपको करता हूं, एक अच्छे दोस्त की तरह, अगली बार जब आप भोजन कर रहे हैं, 10-15 मिनट भोजन को खाने में टाइम लगता है, वो 10-15 मिनट वो टेलीविजन को बंद कर भोजन करना, अपना मोबाइल को थोड़ा साइड में रखकर भोजन करना, और बहुत प्यार से ईश्वर की याद में वो भोजन करना, ये बहुत जरूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताता हूं, अभी जो केरला में जो डिजास्टर हुआ ना, अगर मैं आपको बहुत प्यार से केरला में बुलाऊंगा और आपको मैं रिलीफ कैंप में लेकर जाऊंगा, राइट? रिलीफ कैंप में जब आप जाएंगे, आप क्या वहां पे करेंगे, क्या बोलेंगे? जब हम लोग रिलीफ कैंप की बात को हम लोग न्यूज देते हैं और कोऑर्डिनेट हम लोग कर रहे हैं ना, बहुत न्यूज़पेपर में ये बात लिखी गई और बहुत रियलिटी भी है। रियलिटी ये है कि धन से बहुत लोग सहयोग कर रहे हैं, बहुत मटेरियल जा रहा है, बहुत भोजन जा रहे हैं, बहुत फूड पैकेट जा रहे हैं, एवरीथिंग मेडिसिन जा रहे हैं, लेकिन न्यूज़पेपर्स में ये रिपोर्ट किया गया, सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो काउंसलर्स की जरूरत है, जो काउंसलिंग कर सके, राइट? केरला में ये भी न्यूज आया कि एक व्यक्ति 3-4 दिन रिलीफ कैंप में था, जब पानी थोड़ा कम हुआ वह अपने घर गया, घर जाकर देखा पूरा घर मिट्टी से भरा हुआ, उसी घर में उसने आत्महत्या किया, राइट? इट्स और बहुत सारे केसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मैं बताता हूं, हमारे केरला के भाई बहनों के लिए आप स्थूल तो भेज रहे हो, बहुत लोग भेज रहे हैं, अगर आप जाएंगे तो आप उनको क्या करेंगे, राइट? बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय क्या कर रही है, उनके भाई बहन क्या कर रहे हैं, पता उन्होंने क्या किया? पैकेट जो भी आया उसको तो जो सामान है वो तो रखा छोटे छोटे पैकेट में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ब्रह्मा कुमारी ने बहनों ने क्या किया, भाइयों ने ईश्वर की याद में प्रसाद बनाया, जिसको हम लोग बहुत प्यार से टोली कहते हैं, और जब भी लोग आ रहे थे तो पैकेट तो देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहनों ने वो टोली को कुछ बोलना नहीं है, ऐसे समय में काउंसलिंग में क्या बात करेंगे, सामने वाला व्यक्ति का घर बिजनेस सब कुछ पानी के अंदर, आप क्या बोलोगे, बस उनको शक्ति चाहिए, और ऐसे विपरीत परिस्थिति में 3 शक्ति जरूरत होता है, एक है सहन शक्ति, दूसरा है समाने की शक्ति, तीसरा है सामना करने की शक्ति, राइट? तो बहनें बहुत प्यार से टोली देते, और टोली देखते वक्त दृष्टि देना, राइट? हमारा जो आत्मा की जो पूरी ऊर्जा है ना, हमारी दृष्टि से वो ऊर्जा जाती है, और इतना वंडरफुल रिजल्ट्स, क्योंकि ऐसे समय पर कुछ बोलना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग जो बहुत मृत्यु के भी नजदीक है, अगर आप उनको शक्तिशाली बनाना है तो इसलिए राइट राजयोग क्या है, आज तक हम लोग गिव एंड टेक कर रहे थे, राजयोग इज टेक एंड गिव। सभी सीधे बैठे, अब राजयोग क्या है हम सभी देखते हैं, हाँ सभी महसूस करिए, राइट? शक्ति लो, शक्ति दो, इट्स गिव एंड टेक। परमात्मा से शक्ति लो और सारे विश्व को दो, हाँ सभी लीजिए, ज्ञान लो, ज्ञान दो, दुआएं लो, दुआएं दो, प्रेम लो, प्रेम दो, सुख लो, सुख दो, ये टेक एंड गिव। और जब आप परमात्मा से लेकर देना आरंभ करते हो, तो इतनी आपको दुआएं मिलती है। और खुशी की बात यह है राइट, परमात्मा हमारे लिए एक नई दुनिया लेकर आ रहे हैं, बहुत सुंदर दुनिया, अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड। इसको जन्नत कहते हैं, बहिश कहते हैं, अल्लाह का बगीचा कहते हैं, गार्डन ऑफ इडन कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, किंगडम ऑफ गॉड, हेवन। और ऐसी सुंदर दुनिया का जो फर्स्ट प्रिंस होगा वो होगा श्री कृष्ण, राइट। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और श्री कृष्ण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की कहानियां बचपन से मैं सुनता था, राइट। श्री कृष्ण का अगर आप कैरेक्टर को स्टडी करोगे तो श्री कृष्ण को जन्म लेने के पहले प्रॉब्लम, यस और नो, मामा जी वहां साइड पर बैठे थे, राइट। लेकिन कभी भी श्री कृष्ण को टेंशन में देखा क्या? कभी नहीं। और एक बहुत सुंदर डायलॉग जो मैंने भगवत गीता और बचपन से मैंने सीखा, आप सभी ये जरूर बोलना, सभी बोलिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत बहुत अच्छा होगा। तो अगली बार आपके घर में आंधी तूफान आएगा, याद रखोगे? याद रखोगे, राइट। परमात्मा ने आके कहा, बहुत क्लियर कट कहा, जब बहुत दर्द होता है ना, तो हम लोग शरीर में दर्द होता है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, उसका सर्जरी करता है, हाँ, एनेस्थीसिया देके सर्जरी कराता है। आप क्या कहते हो, डॉक्टर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करता है, उसके बाद आप ठीक होते हो। आप कभी ये नहीं कहते कि ऑपरेशन को बंद करो। उसी तरह इस संसार में लोगों की प्रकृति अगर ठीक करने के लिए, ये एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है, ये जो भी आंधी तूफान चलता है ना, ये हमको फिर से अपने उस ओरिजिनल प्रकृति पर लेकर आने की विधि है। जब आपने सत्य को समझ लिया तो जब भी आंधी तूफान आता है, नथिंग न्यू, कलयुग के बाद एक नया सवेरा जरूर आएगा, एक बहुत सुंदर दुनिया आएगी। और मैं आपको केरला का अनुभव सुनाता हूं। हमारे केरला का एक रिट्रीट सेंटर पानी में भर गया था, मुंबई की दो बहनें, राइट, आदरणीय राज बहन और आदरणीय है ना रश्मि बहन, दोनों वहां पर है ना ये मेडिटेशन सिखाने के लिए वहां पहुंचे, राइट। और जब वो वहां पहुंचे उसके बाद बारिश इतनी होने लगी, और जब हमको पता चला, हम उनको कांटेक्ट करने की कोशिश किए तो बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं, वहां माताओं का मेडिटेशन का प्रोग्राम चल रहा है, मुंबई से दो बहने गए, किसी तरह कांटेक्ट करो। और किसी तरह उनको कांटेक्ट किया गया फोन नंबर से, और जब मैंने फोन लिया तो मेरे मन में संकल्प चल रहा था, सभी माताओं का मेडिटेशन चल रहा है, मुंबई से दो बहने गए, उनकी अवस्था कैसी है। तो जैसे ही मैंने फोन लिया तो मैंने रश्मि बहन और राज बहन से पूछा वहां का सिचुएशन कैसा है। बोला स्वामी भाई, क्योंकि रिट्रीट प्रोग्राम था तो हमारे पास भोजन और पानी की व्यवस्था थी, लेकिन लाइट बिल्कुल नहीं था, फोन कनेक्शन नहीं था, पूरा फर्स्ट फ्लोर में पानी भर गया, हम लोग सेकंड फ्लोर में आए, और कल सभी बहनों ने बड़े प्यार से खुशी से नृत्य किया, डांस किया। यस, दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। और उसके बाद दूसरा दिन जो हेलीकॉप्टर आकर बहुत सारी बहनों को सुरक्षित लेकर गए। होगा तो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, सिर्फ डायलॉग नहीं है, अब धीरे धीरे इसको अनुभव करके प्रैक्टिकल लेवल पर हमने इस बार केरला में जरूर जरूर देखा। और खुशी की बात है, द फर्स्ट प्रिंस इज श्री कृष्ण, और जब वो बड़े होंगे तो श्री लक्ष्मी और नारायण। आज हम वन बेडरूम हॉल किचन की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं जो श्री लक्ष्मी नारायण को हीरे जवाहरात के महल, तो आप में से कितनों को लगता है कि ऐसी सुंदर दुनिया इस धरती पर आनी चाहिए, वो जरा हाथ उठाओ, वेरी गुड। आप में से कितनों को लगता है कि श्री कृष्ण की दुनिया में आपको आना है, वो हाथ उठाओ। तो क्या करेंगे, अगले 24 घंटे चाहे कुछ भी हो जाए, कैन यू बी स्माइलिंग, कैन यू बी चीयरफुल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अंत मति सो गति, राइट। अंत मति ये जीपीएस है, अंत समय आपका जो इमोशंस होगा, फीलिंग होगा, उस जीपीएस से आप टेक ऑफ करेंगे। तो अगर आप बहुत खुशी के जीपीएस से टेक ऑफ करते वही फ्रीक्वेंसी, राइट, तो धरती जैसे ही स्वर्ग बनेगा, आपकी खुशी से वो ऑटोमेटिकली लैंड करेंगे, आप ऑटोमेटिकली लैंड करेंगे, इट्स अ जीपीएस टेक्नोलॉजी। इसे किसी ने मुझसे पूछा, इस राज्यों का द आर्ट ऑफ लिविंग, मैंने कहा नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने वाले बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन परमात्मा शिव जो सदगुरु है वो सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाता है, ही टीचर्स अस द आर्ट ऑफ लिविंग, घर जाने की कला है, अब घर वापस जाना है। तो हैप्पीनेस आप हो या नहीं, पता कब पता चलेगा, जब हम मृत्यु के एकदम नजदीक हैं। और मृत्यु के एकदम नजदीक होकर अगर हमने अपने जीवन को देखा और महसूस किया, वाह मेरा जीवन, वाह, लास्ट सेकंड परीक्षा आएगी, और उस समय अगर आपका वो फ्रीक्वेंसी होगा, और हमारा पुरुषार्थ इसी बात का होना चाहिए, घर गृहस्थ में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, सब कुछ करते हुए अगर मैंने अपने आप को तैयार किया, क्योंकि श्री लक्ष्मी नारायण श्री राम सीता का जो गायन है वो घर गृहस्थ में रहते हुए गायन है। हिमालय के पर्वत में जाकर अकेले रहने की बात नहीं है, सब परिवार को रहते हुए अगर आप इस राज्यों का अभ्यास करेंगे, डेथ शुड बी अ सेलिब्रेशन, मृत्यु उत्सव होना चाहिए। और सत्युग में मृत्यु करके कंसेप्ट होता ही नहीं है, राइट? तो उसका प्रैक्टिस हम जरूर जरूर करें। तो एक काम करते हैं, अगले 2-3 मिनट हम इस बात को जरूर महसूस करेंगे, सभी सीधे बैठे। तो अगले 3-4 मिनट, मेरे पास 7 मिनट का टाइम है, हम 3-4 मिनट इस योग को करेंगे। मैं जो बोलूंगा वो ध्वनि आपके पास आएगी, आप उसका करस्पॉन्डिंग चित्र बनाते जाना। और क्या करना है, बहुत सिंपल है, यहां बैठकर सुबह सुबह का सूर्योदय देखना, राइट? अर्ली मॉर्निंग सनराइज। सुबह सुबह का सूर्योदय कौन सा रंग का होता है? रेड कलर। और सुबह सुबह का सूर्योदय एक आशा विश्वास का प्रतीक है, राइट? फिर आप खुले आसमान को देखना पंछियों को उड़ते हुए। पंछियों को कोई पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है, मैं आत्मा रूपी पंछी भी ऐसे ही हूं। पहाड़ी को देखना, राइट? और उस पहाड़ी शक्ति का स्वरूप है। फिर देखना छल 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 पानी बहता हुआ, पानी प्रति, राइट, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। उस पर साइड पर एक बहुत सुंदर बगीचा, बगीचे में आप बैठे हैं, राइट? करीब आधा मिनट में ये एक्सरसाइज हो जाएगा। अब आराम से बैठना और फिर महसूस करना कि मैं कौन हूं। जैसे एक बगीचे को मेंटेन करने के लिए माली और मालिक होता है, उसी तरह मैं कौन हूं। महसूस करना भ्रुकुटी के बीच में, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, राइट? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, यहां बैठकर आप अपने घर जाना, राइट? ट्रेन में जाएंगे, रोड में जाएंगे तो आपको 10 घंटा 12 घंटा लगेगा, फ्लाइट में जाएंगे तो शायद 3-4 घंटे लगेंगे। मन बुद्धि के द्वारा घर जाना, राइट? आपका घर आपको सामने दिखाई देगा, धीरे से घर में प्रवेश करना, अपने बचपन के दिन, अपने माता पिता को देखना, घर में प्रवेश करना, अपने माता पिता के पास जाना, मातृ ऋण पूरा करना, पितृ ऋण पूरा करना बहुत जरूरी है। मां के पास जाना, बहुत प्यार से झुककर उनके चरणों को स्पर्श करना, मन बुद्धि के द्वारा, दिस इज योग, ये योग है। अपने पिता के पास जाना, राइट? बहुत मतभेद हो सकते लेकिन आज पापा को देखकर बहुत प्यार से उनको जादू का झप्पी लगाना और कहना, पापा आई लव यू। और आज जब मैं सभा में बैठता हूं तो अपनी मम्मा को याद करता हूं, जो बहुत वर्ष पहले मैं खोया था कैंसर से। और आज मुझे बहुत खुशी की बात है कि मेरे लौकिक पापा यहां सामने बैठे। कैन आई रिक्वेस्ट यू टू स्टैंड अप? और मैं चाहता हूं, ये मेरे अपने पिताजी, थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच, राइट? मन बुद्धि के द्वारा जाना, आई लव यू, राइट? दिस इज योग। आधा मिनट में ये होगा। फिर क्या करना, जैसे अपने शरीर के माता पिता के पास गए ना, आप अपने घर गए, शरीर के घर गए, उसी तरह टेक अ वर्टिकल जर्नी अप, राइट? बहुत प्यार से ऊपर जाना और महसूस करना लाल प्रकाश में दुनिया, राइट? परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम, स्वीट साइलेंट होम, राइट? दिस इज अवर दुनिया, राइट? यस, राइट? वहां जाना। और जैसे अपने लौकिक माता पिता से मिले, वैसे ही पारलौकिक माता पिता, आपने सूर्य को देखा, महसूस करिए वो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, और वो हमारे माता पिता हैं। और योग में उनको हम बहुत प्यार से, है ना, जैसे आप अपने पिता को पापा कहते हैं, अब्बू कहते हैं, अब्बा कहते हैं, डैडी कहते हैं। मैं केरला की भाषा में अपने पापा को बहुत प्यार से अच्छन कहता हूं, ACHAN। उसी तरह राजयोग में आत्मा अपने उस पारलौकिक पिता को बहुत प्यार से बाबा कहते हैं, राइट? सभी बहुत प्यार से कहिए, मेरा बाबा। थोड़ा जोर से बोलिए, डराइए नहीं ना बाबा को, थोड़ा प्यार से बोलिए, कौन से बाबा? शिव बाबा, उनको बाबा कहते हैं। उसको खुदा दोस्त कहो, वाहे गुरु कहो, ऑलमाइटी कहो। हाँ अभी बहुत प्यार से कहिए, मेरा बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। अंतिम समय पर ना, आंधी तूफान के समय कोई मोबाइल काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका मन और बुद्धि में ये शब्द है, परमात्मा को याद करना, तो जैसे ही आपने उनको कनेक्ट किया तो शांति के वाइब्रेशंस, प्रेम के वाइब्रेशंस, शक्ति के वाइब्रेशंस, खुशी के वाइब्रेशंस। खुशी कहां से मिलता है? इट गेट्स डाउनलोडेड, जैसे हम लोग सर्वर से डाउनलोड करते। तो आज यहां बैठकर इतना डाउनलोड कर लीजिए, राइट, भले वो आधा मिनट का हो, 10 सेकंड का हो। आजकल जब हम लोग जाते हैं ना तो मोबाइल को चार्जिंग में जाते हैं, लेकिन आजकल हमने एक नया मैकेनिज्म डेवलप किया, पावर बैंक। पावर बैंक में भर के जाते, पता नहीं क्योंकि आजकल एक दो ट्रेन में होते तो सब लोग उसमें फिक्स करते, अपना पावर बैंक है तो किसी पर आश्रय नहीं रहना। राजयोग इज दिस मैकेनिज्म, हर दिन चार्ज करते रहो, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, इट्स लाइक अ पावर बैंक। और फिर धीरे से महसूस करना, एक सुंदर सी दुनिया आ रही है और बहुत सुंदर दुनिया में आप जा रहे हो। इट विल टेक ओनली 1.5 मिनट्स। और लास्ट में मैं गीत आपको बजाऊंगा, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, आदरणीय दादी जानकी जी, राइट। आप लोग ये 2-3 दिन में दादी जानकी जी से मिले या नहीं मिले मुझे नहीं पता, शायद वीडियो से भी मिले, राइट। लेकिन दादी जी जानकी जी 103 ईयर्स, जोर से तालियां बजाइए दादी के लिए, 103 ईयर्स, आज भी इतने एनर्जेटिक। और दादी को एक बहुत अच्छा गीत अच्छा लगता है, वो चलते चलते का गीत, तो आज हम वो दादी जी का जो गीत बहुत पसंद है वो हम यहां से लगाएंगे। आप सभी इसको बहुत ध्यान से सुनना। सो दिस टोटल एक्सरसाइज विल टेक 1.5 मिनट्स, ओके, अप्रॉक्सिमेटली 2 मिनट्स। आराम से बैठिए। चलिए दोस्तों, आज हम एक बहुत सुंदर यात्रा पर निकले। रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। आप इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, फील योर प्रेजेंस, वर्तमान में आप यहां बैठे हैं, आपके साथ यह क्षण दूसरे भी बैठे हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ अ कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। अब धीरे से मन बुद्धि के द्वारा सुबह सुबह का सूर्योदय देखिए, अर्ली मॉर्निंग सनराइज। सुबह सुबह का सूर्योदय आशा और विश्वास का प्रतीक है। खुले आसमान को देखिए, पंछियों को उड़ते हुए। पहाड़ी को देखिए और उस पहाड़ी से बहता हुआ छल छल पानी, एक सुंदर नदी के स्वरूप में। वो नदी के साइड पर एक सुंदर सा बगीचा, रंग बिरंगे फूल, और आप उस बगीचे में बैठे हैं। आपका मन एक सुंदर बगीचे की तरह अब महसूस करिए, इस बगीचे का माली और मालिक कौन? ब्रिकुटी के बीच में आप एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, शांत स्वरूप। आपके चेहरे पर वो शांति रिफ्लेक्ट होगी, प्रेम स्वरूप। आपकी दृष्टि रूहानी दृष्टि, शक्ति स्वरूप। आपके मस्तक पर वो शक्ति, आपकी अंदर की प्रकृति बहुत सुंदर। यहां बैठकर प्रकृति के 5 तत्वों को, शांति, प्रेम, खुशी के वाइब्रेशंस आप पहुंचा रहे हैं। आपके वाइब्रेशंस पांचों तत्वों तक पहुंच रहे हैं। अब मन और बुद्धि के द्वारा एक सेकंड में अपने घर तक पहुंच जाइए। बचपन के वो दिन, आप छोटे से बच्चे के रूप में घर के सामने खड़े हैं, धीरे से आप घर का दरवाजा खोल रहे हैं, घर में प्रवेश कर रहे हैं और आज आपकी नजर ढूंढ रही है मामा पर। बहुत प्रेम से मामा के नजदीक जाइए, झुककर उनके चरणों को स्पर्श करिए, पापा के पास जाइए। जादू की छप्पी, पापा आई लव यू, थैंक यू वेरी मच, दिस इज योग। अपने बच्चों के पास जाइए, ब्रुकुटी के बीच में उनको भी चमकता हुआ सितारा देखिए और जैसे आप उनसे बात कर रहे हैं, बच्चे अब जो हो जैसे हो ईश्वर के एक सुंदर अमानत हो। फीलिंग वेरी गुड। अब एक ऊपर की यात्रा, जैसे आप घर गए थे अपने माता पिता से मिले, उसी तरह मन और बुद्धि के द्वारा एक सेकेंड में आप आत्मा की दुनिया परम धाम लाल प्रकाशमय दुनिया आत्मा के माता पिता मेरे अपने पिता जिनको मैं बहुत प्यार से बाबा कहता हूं, जैसे आप स्थूल सूर्य को देख पाए उसी तरह सर्वश्रेष्ठ योग उस परम ज्योति को देखना जो आपके अपने माता पिता हैं, वो शांति के सूर्य, प्रेम के सागर, शक्ति के स्रोत, मेरा बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धीरे धीरे आप वापस आ रहे हैं। शांति, प्रेम, खुशी से ऑन गॉडली सर्विस, ईश्वरीय सेवा अर्थ। यहां बैठकर महसूस करिए, जब आप घर वापस जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, लोग कैसे भी क्यों ना हो, आप शांति, प्रेम, खुशी से व्यवहार करेंगे। आपको ये स्मृति रहेगी कि बस मैं कुछ समय के लिए रोल प्ले कर रहा हूं और जब तक मुझे रोल प्ले करना है बहुत खुशी और आनंद के साथ। इसलिए संकल्प करिए कि आपका अंतिम समय हमारा, जब आत्मा ये शरीर छोड़ेगी, मृत्यु भी एक उत्सव होना चाहिए, आनंद की अवस्था। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ परमात्मा हमें आर्ट ऑफ लीविंग, जब आत्मा रूपी ड्राइवर इस शरीर रूपी गाड़ी को छोड़ेगी आनंद के साथ, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह बाबा वाह।